आज का क्लास का विषय है सहज पुरुषार्थी जीवन। अपने अनुभव के आधार से अनुराधा बहन बताएंगी कि कैसे हम सरलता से पुरुषार्थ करें और सरलता से बाबामय बन जाए। आपका संक्षिप्त परिचय में देना चाहूंगी। आप 1992 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में आए और 1992 में ही आपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं शुरू की। आप BHMS डॉक्टर भी हैं। आप मेडिकल विंग के इंदौर जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपका एक विशेष गुण है और वो है शालीनता और गंभीरता। सरलता आपके स्वभाव में ही है और आप धारणा का सेवा केंद्र की संचालिका हैं। अनुराधा बहन,
ओम शांति। हमारा आज का विषय है कि सहज पुरुषार्थी कैसे बने। बाबा के हम सब बच्चे बने, बाबा ने हमें मार्ग ही बहुत सहज बताया। क्यों सहज मार्ग बताया? क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं। कितने समय से? 63 जन्मों से भगवान को पाने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए अनेक जन्म हमने मेहनत की। और क्या क्या मेहनत की ये भी बाबा ने नोट किया, ये भी बाबा ने देखा। तीर्थ यात्राएं की, नदियों में स्नान किए, ठंडे पानी में डुबकी लगाई, पैदल परिक्रमाएं की, पहाड़ियों में जाके ऋषि मुनियों ने तपस्या की, या व्रत रखे, यज्ञ किए, अनेक प्रकार की कठिन साधनाएं और कठिन तपस्याएं की, मेहनत की। और ये मेहनत कोई एक दिन एक जन्म नहीं, कितने जन्मों से मेहनत की? 63 जन्मों से मेहनत की। और अब जबकि बाबा हमें मिले हैं, तो क्या बाबा हमें मेहनत का मार्ग बताएंगे? नहीं बताएंगे ना। लौकिक में भी कोई पिता अपने पुत्र को ये नहीं चाहेगा कि सहज मार्ग होते हुए भी मेरा बच्चा मेहनत करे। वो एक जन्म का पिता होते हुए भी उनको इतना ध्यान है अपने बच्चे का। तो शिव बाबा जो कि हमारा अनादि पिता है, परम पिता है, तो वो हमें मेहनत करते कैसे देख सकते हैं? इसलिए बाबा ने हमें जो मार्ग बताया है पुरुषार्थ का, वो बहुत सहज मार्ग बताया है। इसको हम हमारे जो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चार सब्जेक्ट्स के माध्यम से हम समझेंगे या आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अपने पुरुषार्थ को इजी रखें। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे खुद ही अंदर ही अंदर संकल्प करते और अपने संकल्पों से इजी बात को भी कैसा बना देते हैं? डिफिकल्ट बना देते हैं, कठिन बना देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे संकल्प भी इजी, तो पुरुषार्थ भी कैसा होगा? इजी हो जाएगा। पहली जो हमारी सब्जेक्ट है पढ़ाई की, ज्ञान की, इजी है ना। चाहे कोई 60 साल का बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, हर कोई इस पढ़ाई को पढ़ सकता है। क्योंकि इसमें लौकिक पढ़ाई जैसे कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसे कठिन जोड़ गुणा भाग नहीं करना है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। लौकिक पढ़ाई में तो कितनी कठिन कठिन बातें पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ो, कौन सा राजा कब हुआ क्या हुआ वो याद रखो, साइंस में भी कठिन होता है या मैथ्स बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी कठिन होता है, और हमारी पढ़ाई कितनी इजी कि कोई भी इस पढ़ाई को पढ़ करके ऊंच पद की प्राप्ति कर सकता है। इजी तो इजी, बाबा ने पढ़ाई पढ़ाने में कोई अंतर भी नहीं रखा कि ये नया बच्चा है, ये एक मास का है, या ये 10 साल वाला है, या ये 50 साल वाला है, तो इन सबको अलग अलग कैटेगरी में पढ़ाए। बाबा ने ऐसा अंतर रखा नहीं। पहले दिन से जो बाबा का बच्चा बना और जो पहले से बना हुआ है, सभी के लिए पढ़ाई एक ही है, और उस एक ही पढ़ाई में सबके लिए एम, एम भी बाबा ने एक ही दिया है। एम ऑब्जेक्ट हम सबकी एक ही है ना, सभी को देवता बनना है, सबको डिग्री एक ही हासिल करनी है। परंतु हम सोचें कि जो पुराने हैं वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम लेट आए हैं, हम कैसे करेंगे, पर बाबा ने फिर भी एक स्लोगन दिया। याद है बाबा का दिया हुआ स्लोगन नए आए हुए बच्चों के लिए? लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो हम चाहे बाबा के नए नए बच्चे बने हैं, पर फिर भी बाबा की बातों को अपने जीवन में धारण करते, पढ़ाई पढ़ते लास्ट से फास्ट और फास्ट से फर्स्ट जा सकते हैं। इतनी इजी हमारी पढ़ाई है, हर कोई पढ़ सकता है, बस पढ़ाई के लिए हमारा पूरा अटेंशन चाहिए। कई बार हम मुरली के प्रति अलबेले हो जाते हैं। अलबेले कैसे हो जाते हैं? या आलस्य आ जाता है कि नींद ने घेर लिया, आज मुरली सुनने नहीं भी गए, सुबह शाम को चले जाएंगे, या आज नहीं भी सुनी तो फिर क्या कर लेंगे, कल चले जाएंगे, और उल्टे रूप में उसको इजी कैसे कर लेते हैं? मोबाइल से पढ़ लेंगे, सबसे इजी। लेकिन यह हरेक का अपना अनुभव होगा, हमारा खुद का तो है। जब तक मुरली पढ़े नहीं तब तक जो मुरली अंदर में समझ आनी चाहिए वो नहीं होती। मोबाइल से मुरली पढ़ना, जितना अटेंशन क्लास में मुरली सुनने से जाएगा, सेंटर पर मुरली सुनने से जाएगा, उतना मोबाइल पर मुरली पढ़ने से नहीं जाएगा। ये सब साधन तो बाबा ने किस स्थिति के लिए बताए हैं? मोबाइल से मुरली पढ़ना या टीवी पर मुरली सुनना किसी की लाचारी स्थिति है, कोई आ नहीं सकता है, सेंटर तक पहुंच नहीं सकता है, या उनके स्थान पर सेवा केंद्र नहीं है, या बहनें जहां नहीं जाती है, उस लाचारी स्थिति में वो मोबाइल से या टीवी से या मुरली मंगा के पढ़ सकते हैं। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों के लिए हर बड़े शहर में कितने स्कूल बनाए, हर जगह सेंटर्स है ना बाबा के, तो वहां जाकर के रोज हमें मुरली सुनना, जो पहली सब्जेक्ट है ज्ञान की, उस पर अटेंशन देना। लौकिक दुनिया में लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले सारे काम निपटाओ, उसके बाद में फिर आखिरी में सत्संग करेंगे या कुछ करेंगे। और बाबा ने हम बच्चों को कितनी अच्छी दिनचर्या बना के दी हुई है। जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं उन सब की दिनचर्या की शुरुआत ही कैसे होती है? मुरली से होती है ना। तो कितना अच्छा ना हमारा भाग्य है। लोग सुबह उठकर क्या करते हैं? कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कोई टीवी देखेगा, कोई क्या करेगा, और हम सुबह उठेंगे अमृत वेले, तैयार होंगे उसके बाद, और सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? कहाँ जाना है? सेंटर जाना है, अब्सेंट नहीं लगनी चाहिए। तो अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ को इजी रखने के लिए एक बात को अंडरलाइन करें। कौन सी बात? कि सेंटर जाकर के मुरली जरूर सुननी है। लाचारी स्थिति के लिए बाबा ने भी अलग अलग बातें सुविधाएं दी हुई है, परंतु अधिकतर जगहों पर सेंटर हैं जहां क्लासेस होती है। और हमने अपने जीवन में अगर ये बात पक्की बैठा ली कि मुरली सुनने के लिए जरूर जाना है, मुरली मिस नहीं करनी है, तो क्या होगा, हमारे ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ की सहजता बढ़ जाएगी। मुरली से ही सारी पावर मिलती है, मुरली से खजाना मिलता है। फिर एक अकेले बैठ करके मुरली पढ़ना और क्लास में जाकर के मुरली सुनना, उसका भी अंतर आप सबने महसूस किया ही होगा। जब क्लास में हम जाते हैं तो सब तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको देख करके हमें उमंग उत्साह आता है, ये कितने रेगुलर हैं, ये कितने पंक्चुअल हैं, ये कितना बाबा की बातों को अमल में लाते हैं, कैसे इनको मुरली की सारी पॉइंट्स याद रह जाती है, हम भी ऐसे बने। तो जब हम संगठन में जाते हैं और स्टूडेंट्स के साथ बैठकर के मुरली सुनते हैं तो उसका प्रभाव या उसकी धारणा एक अलग ही होती है। तो पढ़ाई की सब्जेक्ट या ज्ञान की सब्जेक्ट बाबा ने हमारे लिए बिल्कुल इजी बना दी। तो ऐसे पुरुषार्थ को इजी बनाने के लिए पहली बात क्या अंडरलाइन करें, कि मुरली क्लास कभी हमारी मिस ना हो। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है योग। योग लगता नहीं या योग कैसे करें, ये शब्द हमें अपने डिक्शनरी से हटा देना है। हम बाबा के बच्चे हैं, हमारा योग नहीं लगेगा तो और किसका लगेगा, हमारा ही तो लगेगा ना। बाबा ने हमें अपना बना लिया, हम बाबा के बन गए और हम अपने मन में ये विचार लाए योग कैसे करें या योग लगता नहीं, ये सोच के हम इस बात को डिफिकल्ट कर देते हैं। और योग को इजी बनाना उसके लिए चलो बाबा के रूम में बैठ करके या सेंटर हम जाएंगे तो सुबह को जाएंगे या शाम को जाएंगे, आधा घंटा बैठकर योग करेंगे, एक घंटा बैठकर योग करेंगे, सारा दिन तो नहीं बैठेंगे ना, सारा दिन बैठेंगे नहीं बैठेंगे। बाबा ने हमें कर्म योगी जीवन बनाना सिखाया है, कर्म सन्यासी नहीं बनाया है, हम कर्म योगी हैं। दिन भर की हमारी जो कार्य प्रणाली है वो भी चलती रहे, हमारी कारोबार भी चलती रहे, लौकिक अलौकिक जो भी, और हम बाबा को भी याद करते रहे। मतलब बाबा को साथ रख करके हम अपनी दिनचर्या चलाएं। तो बाबा को साथ रख करके दिनचर्या चलाएं या कोई भी कर्म करें तो बाबा को याद रखें। तो कई बार इस चीज को कई नहीं समझ पाते कि कोई काम शुरू किया तो बाबा के सामने जाकर कह दिया या बाबा को याद कर लिया, बाबा ये काम है आप हमारे साथ रहना और आप हमारी मदद करना, फिर एक घंटे तक वो काम हो गया या दो घंटे तक हो गया, फिर वो काम पूरा फिनिश हुआ, उसके बाद हम क्या कहेंगे, बाबा आपका थैंक्स, बीच में कहाँ गया, एक घंटा दो घंटा चार घंटा जो भी हमने कार्य किया तो हमने स्टार्टिंग में बाबा को अपने साथ बुला लिया और फिर जब काम पूरा हो गया तब हमने बाबा को कह दिया, क्या बीच में हम बाबा को साथ नहीं रखेंगे, रखेंगे ना। तो बीच में साथ रखने के लिए भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका अपनाएं, जैसे मान लो हम कहीं किसी से भी बात करते हैं या कोई कर्म करते हैं तो उस बात को करने के पहले हमें ये ध्यान आता है कि बाबा ने ये कहा है, ऐसा बोलने का कहा है, ये रॉन्ग है ये राइट है, बाबा की कही हुई बातों को ध्यान में रख करके हम बोलते हैं या बाबा की कही हुई बातों को ध्यान में रख करके हम कर्म करते हैं, बाबा हमें याद रहता है जहाँ कुछ करते हैं। रॉन्ग होता है तो याद आ जाता है कि नहीं ये रॉन्ग है, ये हमें नहीं करना चाहिए। जब हर समय ये याद रहता है, हर कर्म में बोल में संकल्प पर ये अटेंशन रहता है कि बाबा ने ये करने के लिए कहा है और बाबा ने इस बात के लिए मना किया है। ऐसे हम बाबा की बातों को स्मृति में रखते हुए, डायरेक्शन में, डायरेक्शंस को स्मृति में रखते हुए फिर कर्म व्यवहार में आते हैं या वाणी में आते हैं, तो हम बाबा को इजीली पूरा समय याद रख सकते हैं। अगर बीच बीच में अटेंशन कहीं और चला भी जाता है, बुद्धि है ना पारे के समान, एक सेकंड में सोचेंगे तो एक सेकंड में बुद्धि बाबा की याद से हट जाएगी, परंतु फिर बाबा ने ये कहा है, मन ही मन बाबा से बातें करते करते उस कर्म को करेंगे तो इजीली बाबा की याद हमारे अंदर बनी रहेगी। और अगर हमने सर्व संबंध अपने बाबा से बना लिए ना, सभी ने अपने सर्व संबंध बाबा से, बाबा हमारा सर्व संबंधी है, 63 जन्मों से हम एक ही गीत गाते आ रहे हैं मंदिरों में जाकर, या जो भी आरती करते भजन करते तो क्या गाते, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो अब वो प्रैक्टिकल करने का टाइम है, उसको अपना फ्रेंड बनाने का टाइम है, पिता के रूप में साथ रखने का टाइम है, टीचर के रूप में उसकी शिक्षाओं को धारण करने का टाइम है। तो बाबा को जब सर्व संबंधी हम बना लेते हैं तो बाबा की याद इजी हो जाती है। एक भी संबंध अगर हमारा बाबा से कम रहा तो क्या होगा, बुद्धि बार बार उस संबंध की तरफ जाएगी। इसलिए सर्व संबंध हमारे किससे हो, बाबा से हो। अंदर ये दिल में पक्का बिठा लो, एक बाबा दूसरा ना कोई। और बाबा ये पाठ हमें समय समय पर पक्का कराते भी हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति सबके साथ होती है, सबके सामने कोई न कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि कुछ अचानक कोई घटना हो गई या कुछ काम हो गया, जरूरी नहीं है कि कोई बुरी बात हो, कुछ भी हो गया, और जो हमारे मददगार हैं उस कार्य को लेकर के उस समय हमें उनकी हेल्प नहीं मिल पा रही या वो वहां है ही नहीं, और बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति तो नहीं आ पाएगा ना वहां, और बाबा को याद करेंगे तो बाबा आएंगे या नहीं आएंगे, बाबा आ जाएंगे। एक सेकंड में बाबा को हम जिस भी संबंध से याद करेंगे, बाबा उस संबंध को निभाने के लिए हम बच्चों के सामने हाजिर हो जाएंगे। इसलिए सर्व संबंध बाबा से बनाएंगे फिर योग मुश्किल हो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम है ही सहज योगी। हमारी जो ब्राह्मण जीवन है या हमारी पढ़ाई है या हमारा योग है, बैठ करके लगाने की योग लगाने का नहीं है सारा समय, या पढ़ाई पढ़ लिया एक घंटा वो नहीं है, लेकिन हमारा जो भी ज्ञान और योग है इसका यूज हमें प्रैक्टिकल लाइफ में करना है। मुरली तो हम केवल सुबह एक घंटा सुनेंगे, क्लास तो केवल सुबह एक घंटा करेंगे, वो हो गई थ्योरी की क्लास, लेकिन सारा दिन भर कौन सी क्लास चलती है, प्रैक्टिकल। जो सुना या जो बाबा को याद किया वो हमारे प्रैक्टिकल कर्म में, हमारी दिनचर्या में आना चाहिए। जैसे जो बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं वो जानते हैं कि जितना अटेंशन थ्योरी पे देते हैं उससे ज्यादा अटेंशन किस पर चाहिए, प्रैक्टिकल मार्क्स पर। और हमारा तो प्रैक्टिकल मार्क्स के ही, प्रैक्टिकल मार्क्स ही हमारे ज्यादा हैं, क्योंकि जो सुना है वो हमें अपने संस्कारों में लाना है। या योग जो हम लगाते हैं, योग का अर्थ ही है, हमने बाबा को याद किया, बाबा से याद करके शक्ति जमा की, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या होगा, हमारे संस्कारों में परिवर्तन, हमारी दृष्टि में परिवर्तन, हमारी वाणी में परिवर्तन। हम बाबा को याद कर रहे हैं, हमारा योग का बल बढ़ता जा रहा है, तो उसका प्रूफ ही यह है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आते जाएगा। ऐसे नहीं कि जब से बाबा के बने जैसे थे वैसे ही हैं और रोज योग लगा रहे हैं, तो योग तो लगा रहे हैं लेकिन बाबा से कनेक्शन जुड़ नहीं रहा है। अगर कनेक्शन जुड़ेगा और बाबा की शक्तियां जरूर मिलेगी और बाबा की शक्तियां आत्मा में आएगी तो आत्मा के पुराने संस्कार परिवर्तन ना हो ऐसा होगा ही नहीं। तो बाबा को याद करके अपने संस्कार परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह से अपने दिन भर की दिनचर्या में हम योग को शामिल करेंगे। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है तीसरा वो कौन सा है, धारणा। जब हमारा पढ़ाई पर पूरा अटेंशन होता है, योग से हम अपने को परिवर्तन कर लेते हैं। योग को भी सहज सहज से सहज बाबा क्या कहते हैं, बच्चे योग शब्द नहीं कहो, क्या कहो, याद। याद तो पढ़ाई और याद से जब हम अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही कैसा बन जाता है, धारणा स्वरूप बन जाता है। बाबा की मुरली सुनते हमारे कर्म में हमारे बोल में परिवर्तन आते जाता है। और हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, सबसे पहले इसका प्रमाण किससे पता चलता है, हमारी वाणी से। सबसे पहले कोई हमसे मिलता है तो हमारे मुख से जो बोल उनको सुनने को मिलते हैं वही हमारे परिवर्तन का को प्रत्यक्ष करते हैं कि हमारा बोलना कैसा है, हमारे बोल सुखदाई हैं, हमारे बोल प्यार के हैं, हमारे बोल नम्रता वाले हैं। ये जब योग करते हैं और पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारे बोल में सुधार स्वतः ही आएगा, क्योंकि जब भी बोलेंगे तो पहले ऐसा नहीं डायरेक्ट बोल दिया, पहले बोल दिया जोश में आकर के मन में आया और फिर बाद में उस पर विचार किया। बाबा ने क्या बताया है, पहले सोचो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, उसके बाद फिर बोलो। क्योंकि अगर पहले बोल लेंगे और बाद में सोचेंगे तो बाद में सोचना कौन सा रूप हो जाएगा, पश्चाताप का रूप हो जाएगा। तो एक सेकंड की बात है ना, बोलने के पहले एक सेकंड रुकें, सोचें, बाबा की याद में जैसा बाबा ने सिखाया है उस तरह के बोल हम बोलें। हमारे मुख से ऐसे कोई बोल ना निकले जिससे हम किसी को हर्ट करें, किसी को दुख पहुंचाएं, किसी के लिए नफरत के बोल, बदले की भावना के बोल, ये बोल हमारे अंदर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, तो प्रत्यक्षता के लिए सबसे पहले वाणी के द्वारा ही हमारा संबंध संपर्क किसी से भी होता है। बाकी हमारे नेचर को या और चीजों को तो कोई बाद में जानेगा, लेकिन सबसे पहले किससे जाना जाता है व्यक्ति, बोल के द्वारा। इसलिए बोल हमेशा हमेशा कैसे होने चाहिए, मीठे, सुखदायी, प्रेम पूर्वक, नम्रता के बोल होने चाहिए। वाणी में अहंकार नहीं होना चाहिए, वाणी में क्रोध नहीं होना चाहिए, वाणी में किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी धारणा की सब्जेक्ट है। और इसके लिए चाहे कोई इसको इजी कैसे बनाए, बाबा की मुरली में आज हमने जो सुना उसको आज ही हम धारण कर लें। आज बाबा ने कहा बच्चे आज किसी को भी दुख देने वाले बोल नहीं बोलना, तो दिन भर हम उस बात पर अटेंशन दें कि मुझे अपने ऊपर आज ये अटेंशन रखना है, ये जीबान पर पूरा कंट्रोल चाहिए। ऐसे नहीं कि गुस्से में आके हमने बोल दिया फिर बाद में याद आया कि अरे आज तो बाबा ने मना किया था दुख देने, फिर बाद में हमने सॉरी किया, तो मतलब क्या निकला, हमने मुरली भी सुन ली फिर दिन भर में किसी को दुख देने वाले बोल भी बोल दिए और फिर शाम को जब चार्ट सुनाया तो बाबा से सॉरी बोल दिया, तो ये सहज पुरुषार्थ हुआ, ये तो डिफिकल्ट हो गया। पहले मुरली सुन ली फिर याद भी नहीं रही और किसी को दुख देने वाले बोल भी बोल दिए और उसके बाद बाबा से हमने सॉरी कर लिया। अब मान लो बोल लिया तो जिसके लिए बोला उस आत्मा के भी तो संकल्प चलेंगे ना, और उसके संकल्प हमारे पुरुषार्थ को विघन रूप बनेंगे, हमारे बुद्धि भी बार बार उस तरफ जाएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे बोलने के पहले सोचो और फिर बोलो, तो बोल पर बड़ा अटेंशन चाहिए। जीबान के लिए क्या कहते हैं, तलवार से भी तेज है, कहते ना तलवार का घाव तो एक बार मिट सकता है, मलम पट्टी करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हमने किसी को कोई दुखदाई बोल बोल दिए तो वो व्यक्ति क्या कह के जाता है, इसकी बात हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, या उसने जो कहा वो हम जीवन भर हमें याद रहेगी। और कोई अच्छी बात हमें कह जाता है तो भी हम क्या कहते हैं, इसकी बात जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पॉजिटिव रूप में भी वही बात आती, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोल, अच्छे बोल, मधुर बोल ही बोलें। फिर कर्म भी हमारे ऐसे होने चाहिए कि हमारे किसी भी कर्म से किसी को दुख न पहुंचे। मान लो हमें कोई भी जवाबदारी मिली है, लौकिक में या अलौकिक में, सेंटर पर जो कार्य हम करें उसको पूरी लगन से, पूरी जिम्मेवारी के साथ करें। ऐसे नहीं कार्य करना है, फटाफट काम पूरा कर दिया, काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ, बाबा ने जैसे सिखाया या जैसे कहा या निमित्त आत्माओं के जो डायरेक्शन मिले उस प्रमाण हमने किया या नहीं किया, बस ऐसे ही अलबेलेपन में आकर के जल्दी जल्दी उसको पूरा कर दिया। और हमारे करने के बाद जिन्होंने हमें उस कार्य की जवाबदारी दी थी उनके संकल्प चले कि ये काम ठीक नहीं हुआ, तो हमारे किए हुए कार्य के सेवा के नंबर जमा होंगे नहीं। नंबर कब जमा होंगे कि हमने उस कार्य को दिल जान से बिल्कुल कला का रूप देकर के अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया, चाहे वो कोई भी कार्य हो, खाना बनाने का हो, चाहे वो सफाई का हो, चाहे किसी से मिलने जाने का हो, या सेंटर तैयार करने का हो, बाबा रूम तैयार करने का हो, कोई भी कार्य हो, उस कार्य को हम इतनी लगन, इतना दिल जान से करें कि वो कार्य परफेक्ट हो। हो सकता है कि हमें वो कार्य पूरी तरह से नहीं आता या हम उसमें उतने माहिर नहीं हो, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करने में कोई कमी ना छोड़े। अपनी तरफ से हम 100% पुरुषार्थ करें, 100% अपनी शक्ति उसमें लगाएं, फिर बाबा अपने आप उस कार्य के लिए हमें शक्ति देगा, वो कार्य के लिए विशेषताएं बाबा हमारे अंदर भर देगा। पर जो भी जवाबदारी हमें मिले उसे कैसे करना, बहुत प्यार से, बहुत लगन से। जैसे हम किसी को सबसे सिंपल अपने आप से उस चीज को लेकर के देखें कि हम किसी को कोई काम बताते हैं और वो कोई काम ठीक से नहीं करे तो फिर हम क्या करते हैं, इतना सा बताया था, इतने से काम को इन्होंने ऐसे नहीं किया, हमारा संकल्प चलता है ना। तो अगर हमें बाबा कोई कार्य देता है या हमें निमित्त आत्माएं कोई कार्य देती हैं या हम लौकिक में हैं, हर एक की अपनी अपनी कोई न कोई जवाबदारी है, तो उस कार्य को हम अच्छे से अच्छा करने का पूरा पूरा प्रयास करें तो बाबा खुश होंगे और हमें भी खुशी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी और दुआओं का खाता भी जमा होगा। और दुआओं के लिए तो क्या कहा जाता है, दुआओं की स्पीड कितनी तेज है, दुआओं की स्पीड पता है आप सभी को, बाबा ने बताया है अव्यक्त वाणियों में, दुआओं की स्पीड रॉकेट से भी तेज है। रॉकेट को तो उड़ने के लिए 10 सेकंड तक उल्टी गिनती गिनते हैं तब रॉकेट उड़ता है, परंतु दुआओं में इतना बल है जो एक सेकंड में कार्य कर देती है। इसलिए जो भी कर्म करें सुख देने वाला करें, चाहे भोजन बनाएं, चाहे सफाई करें, चाहे जो भी कार्य हो, उस कार्य को ऐसा करें कि जिनके लिए भी हम वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से उनको सुख मिलना चाहिए, उस कार्य से उनको खुशी मिलनी चाहिए, तब वो कर्म के नंबर हमारे जमा होंगे। फिर है संकल्प, वाणी कर्म संकल्प, संकल्प भी हमारे कैसे हो, पॉजिटिव हो, स्वचिंतन के हो, परमात्म चिंतन के हो, शुभ भावना के हो, इस तरह के संकल्प हमारे हो। ड्रामा में सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, परंतु किसी के पार्ट को देख करके हम अपने संकल्प ऊपर नीचे करें, हम अपने संकल्प चलाएं, इससे क्या उनका पार्ट चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। उसके बजाय शायद हम शुभ भावना रखेंगे, शायद क्या शुभ भावना रखेंगे तो आज नहीं तो कल परिवर्तन जरूर हो जाएगा। इसलिए कोई भी आत्मा है, ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, किसी के लिए भी हमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, किसी के लिए भी हमें उल्टा नहीं सोचना है कि ऐसे क्यों करते हैं, उसके बजाय अच्छा सोचें कि ये भी इन्हें भी अच्छा करने का तरीका आ जाए, ये भी अच्छा करें, ये भी अच्छे बन जाएं, ऐसे हमारी कल्याण की भावना होगी, कल्याण के संकल्प होंगे तो एक न एक दिन वो संकल्प काम जरूर करेंगे, उस आत्मा तक वो संकल्प पहुंचेंगे जरूर और उस आत्मा के जीवन में परिवर्तन आएगा ही। तो धारणाओं में, संकल्प में किन बातों को धारण करना, संकल्प हमारे पॉजिटिव हो, शुभ चिंतन शुभ भावना वाले हों, बोल हमारे सुखदायी मीठे मधुर नम्रता वाले हों और कर्म भी हमारे सुखदायी हों, परफेक्ट हों, कर्म अच्छे हों, एक्यूरेट हो। तो धारणा में इन बातों को हमें अपने जीवन में लाना, जब ऐसा धारणा स्वरूप हमारा जीवन होगा तो हमारा जीवन पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब सबकी दुआएं मिलती है ना तो पुरुषार्थ में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती है और ब्राह्मण परिवार की मिलती है तो फिर बाबा की दुआएं तो है ही है। तो अगर बाप दादा की दुआएं मिलती है, ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलती है, लौकिक की दुआएं मिलती है, फिर पुरुषार्थ कैसा हो जाता है? एकदम सरल इजी हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता कि पुरुषार्थ में क्या करें क्या करें, अपने आप ही उनका जीवन नेचुरल बाबा की बातों को अपने जीवन में लाते हुए आगे से आगे बढ़ते जाता। पता ही नहीं पड़ता कि बाबा के बने थे तब क्या थे और आज देखो बाबा ने क्या से क्या बना दिया। सोचा भी नहीं था कि हम बाबा के ऐसे बच्चे बन जाएंगे और हम कहां से कहां पहुंच गए। तो ऐसे पुरुषार्थ करते करते इजी आगे बढ़ जाएंगे। और चौथी सब्जेक्ट सेवा की, सेवा की सब्जेक्ट बहुत बड़ी, जो हमने पढ़ाई पढ़ी, जो हमने योग किया या जो हमने धारणाएं की, जब सेवा की फील्ड में हम आते हैं तो सेवा की फील्ड में मनसा सेवा करेंगे तब हम अकेले होंगे, लेकिन कोई भी सेवा करते हैं तो संगठन में हम सेवा करते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तब हमारे अंदर के संस्कार, हमारे अंदर के योग या हमारे बोल से वो प्रत्यक्ष होता है कि हमने पढ़ाई को, हमने योग को या बाबा की शिक्षाओं को कहाँ तक अपने जीवन में उतारा है। जब सेवा के क्षेत्र में आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो सब तरह की आत्माएं मिलेंगी, सबके अलग अलग संस्कार होंगे और होना भी चाहिए, एक जैसा अच्छा लगेगा। कोई ड्रामा हो और उस ड्रामा में सबको एक ही रोल दे दिया जाए, सारे के सारे युधिष्ठिर बन जाएं, तो ड्रामा अच्छा लगेगा? नहीं, सब चाहिए ना, भीष्म पितामह भी चाहिए, युधिष्ठिर भी चाहिए, नकुल भी चाहिए, सहदेव भी चाहिए, सब चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो इस ड्रामा में भी वैरायटी आत्माएं हैं और हर एक का अपना अपना संस्कार है। तो सेवा के क्षेत्र में जब हम आते हैं तो अनेक आत्माओं के संस्कारों के बीच हम अपने सेवा को अंजाम दें, उसमें अपनी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करें। कई बार ये होता ना, इनके साथ हम सेवा नहीं कर सकते, इनसे हमारी नहीं जमती, या इनके साथ हमें सेवा नहीं बताओ, लेकिन हम सेवा किसी व्यक्ति के साथ करते हैं क्या? किसको साथ रख करके सेवा करते? बाबा को साथ रख करके सेवा करते ना, फिर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इनके साथ हम सेवा नहीं कर सकते। हमारा साथी कौन है? बाबा है, सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। उसको साथ लेकर के हम कोई भी सेवा करेंगे तो बाबा हमारे लिए सारी परिस्थितियों को भी पॉजिटिव बना देंगे। हम जैसा चाहेंगे वैसा सहज हमारे लिए मार्ग भी बनता जाएगा। सेवा मनसा से भी करनी है, वाणी से भी करनी है और कर्मणा से भी। कर्मणा सेवा, अनेक जन्म हमने जो पाप कर्म किए इन कर्मेंद्रियों से ही किए, हाथों से या मुख से या दृष्टि से, जो भी पाप कर्म किए इन कर्मेंद्रियों से किए। और पाप कर्म करते करते क्या बन गए? पाप आत्मा बन गए। पाप का पलड़ा कैसा हो गया? भारी हो गया। अब उस पलड़े को हल्का करना है तो इन्हीं कर्मेंद्रियों से क्या करना पड़ेगा? सेवा का पुण्य जमा करना पड़ेगा। जितना इन कर्मेंद्रियों को हम बाबा के यज्ञ की सेवा में लगाते हैं, उतना जो इन कर्मेंद्रियों से हमने अनेक जन्मों में पाप कर्म किए हैं, वो पाप कर्म हमारे कटते जाएंगे। क्योंकि इसी इन्हीं हाथों से या इस मुख से किसी को दुख के बोल बोले या इन्हीं हाथों से कोई ऐसे कर्म किए, अब इन्हीं हाथों से हमें क्या करना है? पुण्य कर्म करना है। तो जितना हम बाबा की सेवा करते हैं उतना क्या होता है? पिछला जो पाप कर्म है वो हमारे माइनस होते जाते और इधर पुण्य कर्मों का पलड़ा हमारा भारी होता जाता। तो बाबा के यज्ञ की सेवा में अपनी कर्मेंद्रियों को लगाना, बाबा कहते हैं ना, बच्चे हड्डी हड्डी यज्ञ सेवा में स्वाहा कर दो। तो कोई भी प्रकार की सेवा मिले हमेशा कैसे? हाँ जी बाबा, कभी भी ना नहीं कहो। अब आप सोचेंगे कि मान लो हमें कुछ नहीं आता हो तो क्या फिर भी हाँ कर दे? अगर कोई कार्य नहीं आता हो तो भी हाँ कर दे? हाँ कर दे, बाबा ने यही कहा है, हाँ कर दे। हाँ करने के बाद जो निमित्त हैं, जिन्होंने हमें डायरेक्शन दिया है उस कार्य को करने के लिए, उनसे हम कह सकते हैं कि आप हमें इस विषय में थोड़ा सा गाइड करें, आप हमें बताएं कि ये कार्य करना कैसे है, तो वो भी हमें गाइड करेंगे। और हमने हाँ किया ना तो क्या होगा? बाबा हमारे अंदर उस कार्य को करने की शक्ति भी भर देंगे। क्योंकि अगर कोई कार्य बाबा ने हमें दिया है तो क्या बाबा को नहीं पता है हमारे बारे में? पता है ना बाबा को। तो बाबा ने हमें दिया है तो बाबा जानता है कि मेरा ये बच्चा उस कार्य को कर सकता है, तभी बाबा ने वो कार्य की जवाबदारी हमें दी है। इसलिए अपने मन के अंदर ये संकल्प लाएं कि मैं नहीं कर सकती हूँ या मुझसे ये कार्य नहीं हो पाएगा, ऐसा कहना ही नहीं है, ऐसा सोचना ही नहीं है। लेकिन जी बाबा, हाँ बाबा, बाबा ने कहा ही है कि बच्चे कोई भी कार्य मिले क्या कहो? हाँ जी। तो किसी भी प्रकार की सेवा में हाँ जी का पाठ हमारा पक्का हो। बाबा ने यही सिखाया, हाँ जी बाबा, जी बाबा। तो हाँ जी का पाठ पक्का होने से अगर कोई कार्य हमें नहीं आता है, कोई सेवाएं हमें नहीं भी आती है, तो भी क्या होगा? हम बचपन में छोटे थे और अब बड़े हो गए, तो इतने सारे कार्य हम क्या बचपन से ही सीख गए थे? नहीं, जैसे जैसे बड़े होते गए वो सारी विशेषताएं हमारे अंदर आती गई। तो ऐसे अब बाबा के बने हैं और बाबा ने कोई नई सेवा की जवाबदारी दी है, तो भी हिम्मत रख करके उस कार्य को करने का अंदर संकल्प रखें कि बाबा ने मुझे ये कार्य करने के लिए कहा है और मुझे ये कार्य करना ही है, मुझे विजयी बनना है, क्योंकि मेरे साथ कौन है? बाबा। जब इस तरह से कोई भी सेवा के लिए हाजी करेंगे तो आगे से आगे बढ़ते दुआएं पाते जाएंगे और पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। फिर मनसा सेवा, मनसा सेवा के लिए भी हम अपने दिन भर की दिनचर्या में अपना टाइम फिक्स रखें। जैसे बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा हुआ है कि लास्ट टाइम ऐसा आएगा जो अनेक आत्माओं के हिसाब किताब है। अब जो आत्माएं हमारे सम्मुख हैं उनसे तो हम हिसाब किताब कोई न कोई तरह से हमारा चुकतू हो जाता है स्वभाव संस्कार के माध्यम से, पर 63 जन्मों में कई करोड़ों आत्माएं लाखों आत्माएं हमारे संपर्क में आई, परंतु अभी वो नहीं है और उनके साथ हमारे हिसाब किताब हैं, वो भी चुकतू करने हैं। और अगर वो नहीं चुकतू होते हैं तो लास्ट में बाबा ने कहा है कि बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो कहाँ जाएंगी, भटकेंगे ना, और वो आत्माएं फिर हमारे पास हिसाब किताब लेने के लिए आएंगी। तो ऐसे हिसाब किताब लेने के लिए आए उसके बजाय जो उनको चाहिए हम पहले ही दे दें। किसे दे दें? मनसा सेवा के द्वारा। जब हम मनसा सेवा करते हैं, पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देते हैं, तो हमारी शांति के, पवित्रता के जो वाइब्रेशन है, हमें नहीं पता है कि किन किन आत्माओं तक के साथ हमारा क्या हिसाब किताब है, उन आत्माओं तक वो हमारे वाइब्रेशन पहुंचते हैं और वो आत्माओं से जो हमारे लेन देन है, हिसाब किताब है, वो मनसा सेवा के माध्यम से ही चुकतू हो जाते हैं। फिर उन आत्माओं का हमारे से हिसाब किताब ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, फिर वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आएगी। तो मनसा सेवा के लिए सब अपना टाइम फिक्स जरूर करें कि दिन भर में आधा घंटा, एक घंटा, यूं तो चलते फिरते जो भी हमें मिलता है, हर किसी के लिए हमें मन में पॉजिटिव संकल्प रखना ही है, शुभ भावना देनी ही है, इनका कल्याण हो जाए, इनका जीवन सुखी बन जाए, हर किसी के लिए जिसको जो चाहिए। परंतु जब हम बैठ करके योगाभ्यास करते हैं तो उस समय पूरे विश्व की आत्माओं को बाबा से शक्तियां लेकर के उन शक्तियों का दान देते रहें। तो जब इस तरह से हम बाबा के जो बताए हुए सब्जेक्ट्स हैं उन पर ध्यान देते हुए पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ हमारा इजी हो जाएगा। एक इजी पुरुषार्थ में एक चीज और बहुत बड़ा विघ्न बनती है, वो है इच्छाएं। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती। तो यूं तो छोटी सी बात लगती, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। हम स्लोगन पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुन लिया कि इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, परंतु मान लो हमने किसी से भी कोई इच्छा रखी और हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, हमारे संकल्प चलेंगे, देखा इन्होंने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसे कहा था। मतलब उस इच्छा ने क्या किया, हमें अच्छा बनने नहीं दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये अच्छा बनने नहीं देती। जो आत्माएं हैं उनसे इच्छा रखेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी और फिर दुख में हमारे संकल्प उनके प्रति नेगेटिव चलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इच्छाएं, तृष्णाएं, इन सबको खत्म करना। एक छोटी सी कहानी याद आती है इस बात पर कि पुराने समय में एक राजा हुए, राजा भोज, सुना होगा आप सभी ने राजा भोज का नाम। राजा भोज हुए तो उनका दरबार लगा हुआ था, उनके दरबार में उन्होंने सभी के सामने एक प्रश्न रखा। प्रश्न ये रखा कि ऐसा सबसे गहरा कुआं कौन सा है जिस कुएं के अंदर जाने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। पूरे सभा में, दरबार में जो भी बैठे थे कोई भी उस बात का जवाब नहीं दे पाया। फिर राजा ने, राज पंडित जो होते हैं, पुराने समय में राज पंडित हुआ करते थे जो राजा के पंडित होते थे, तो राज पंडित को बुलाया और उनसे कहा कि 7 दिन के अंदर इस प्रश्न का जवाब दो कि सबसे गहरा कुआं कौन सा है जिस कुएं में जाने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल है, और ये भी शर्त रखी कि अगर 7 दिनों में आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो आपको जो भी धन या उपाधि या जो कुछ भी मिला है वो सब आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो राज पंडित इस जवाब को खोजने के लिए निकल पड़े, तनाव में आ गए कि क्या करें। उन्होंने बहुत विचार किया, ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए। 6 दिन बीत गए, लेकिन उनको इस बात का जवाब नहीं मिला कि ऐसा गहरा कुआं कौन सा है कि जिसके अंदर जाना तो आसान है पर उससे निकलना आसान नहीं है। सोचते सोचते फिर एक दिन वो निकले बाहर। बाहर गए जंगल की तरफ, एक गडरिया, गडरिया समझते ना, जो भेड़ चराते ना, भेड़ चराने वाले को गडरिया कहते हैं। तो गडरिया मिला, भेड़ चराने वाला। उसने कहा कि क्या बात है पंडित जी, आप राज पंडित हैं, इतनी खुशी की बात है और आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? आपके चेहरे पर तो ये उदासी होनी नहीं चाहिए, क्या बात है? तो पंडित जी ने कहा कि इस गडरिये को बताने से क्या फायदा, ये क्या मेरे प्रश्न का जवाब देगा। पंडित जी यूं ही उदास मुंह लेकर के चल दिए। चलने लगे तो गडरिये ने फिर से रोक करके कहा कि पंडित जी हम भी सत्संगी हैं, आप अपना प्रश्न तो बताइए, हो सकता है कि हम भी आपके प्रश्न का जवाब बता दें। तो पंडित ने कहा ठीक है, पंडित जी ने कहा बताता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि अपना प्रश्न बताया पंडित जी ने कि राजा ने कहा ऐसा गहरा कुआ कौन सा है जिसके अंदर जाना तो मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मेरे पास है इसका जवाब। तो कहा बताओ क्या जवाब है। मेरे पास पारस है, वो पारस मैं आपको दे दूंगा ना, तो एक राजा भोज क्या, इनके जैसे हजार राजा भोज आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। तो पंडित ने कहा कि लाओ वो पारस मुझे दे दो। तो उस गडरिये ने, भेड़ चराने वाले ने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, ये पारस तो मैं तुम्हें दूंगा परंतु उसके पहले मेरी एक शर्त है, वो शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। तो पंडित जी ने कहा क्या शर्त है? तो कहा कि भेड़ का दूध तुम्हें पीना पड़ेगा। तो पंडित जी ने कहा भेड़ का दूध पीने से तो मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, मैं नहीं पीऊंगा, ऐसा कहा। तो कहा फिर मैं तुम्हें पारस भी नहीं दूंगा, जाओ। तो अच्छा कहा पीता हूँ मैं। पंडित जी मान गए कि चलो ठीक है मैं भेड़ का दूध पीता हूँ, पर फिर उसने शर्त रखी कि भेड़ का दूध तो पीना है लेकिन इसको मैं झूठा करके दूंगा, उसके बाद आप इस भेड़ के दूध को पीना। पंडित जी को फिर ईगो आया अंदर कि ये इसका झूठा किया हुआ दूध मैं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। फिर पंडित जी जाने लगे तो कहा कि फिर मैं पारस नहीं दूंगा। तो पंडित जी उसकी इस शर्त पर भी राजी हो गए कि ठीक है तुम्हारा झूठा किया हुआ दूध भी मैं पी लूंगा। फिर पंडित जी जब इस बात को माने तो भेड़ चराने वाला फिर से कहा कि वो तो पहले की बात थी, अब तो ये सामने जो कंकाल पड़ा है ना, इसकी खोपड़ी में भेड़ का दूध मैं रखूंगा और पहले एक कुत्ता इसको झूठा करेगा, उसके बाद ये दूध आप पियोगे। तो पंडित जी को और लगा, परंतु अब पारस तो उसके बिना मिलना नहीं था, तो पंडित जी उसके लिए भी तैयार हो गए। तब उस भेड़ चराने वाले ने कहा कि बस यही वो गहरा कुआ है लोभ। उसने पारस का लालच दिया ना पंडित को कि पारस से सोना बन जाता है, पारस जिस चीज से टच करो क्या होगा, वो चीज सोना बन जाएगी। तो लोभ में आकर के पंडित जी ने उस भेड़ चराने वाले की हर बात को मानते गए और अपने लेवल से भी वो नीचे आ गए। तो सबसे गहरा कुआ कौन सा है? लोभ, इच्छाएं, तृष्णाएं। लोभ में आकर के व्यक्ति हमेशा नीचे की ओर जाता है और लोभ के कारण कई प्रकार के रास्ते अपनाता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, ब्राह्मण परिवार की दुआएं जमा करनी है, इसी पुरुषार्थ बनाना है, तो अपने जीवन से इच्छाओं तृष्णाओं को खत्म करें, बाबा की आज्ञाओं को अपने जीवन में धारण करते पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे से आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति।
सफल कर लो सांसें अपनी, Thank you. सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना। पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
प्रभु
उनसे पाले उनसे सुख सारे क्या होगा क्या होगा कैसे होगा अब न कोई हरी याद कर व्यर्थ न जाए जीवन अपना पल पल को आबाद कर सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता को याद कर सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता को याद